चतुरस का यशोदा का नाम लेने पर भी अधिक कुछ न बोल सके, बल्कि उसके लिए उतना का उदाहरण दिया। उतना ने वेश धारण किया तो उसको सदगति दे दी वैकुंठ से ऊपर गोलोक की। तो जिनका वेश धारण किया वो जो प्रेम से भरते हुए अपने स्तनों के दूध से कृष्ण का लालन पालन करती थी और हृदय में पुत्र स्नेह था, तो उनको उनकी गति क्या देंगे, सदगति क्या देंगे। फिर यशोदा का तो बहुत दूर की बात है, इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं। यशोदा जी के वात्सल्य भाव का कृष्ण के लिए देना नहीं, वो नहीं दे सकते, इसका कोई वर्णन साधारण आदमी नहीं कर सकता है। उन लोगों के लिए भी जो जिनका देश किया था उनके लिए भी ब्रह्मा जी कह रहे हैं देवरात से भी उनके लिए क्या देंगे, फिर यशोदा के लिए क्या देंगे, बस यही कहकर फिर चुप हो जाते हैं। इसलिए वास्तव्य भाव कैसा है, यशोदा जी का वात्सल्य महाराज दशरथ और कौशल्या से भी अधिक बहुत अधिक तुलना नहीं हो सकती। देखो ऐसा उनका वात्सल्य किनका, जबकि कौशल्या के और दशरथ के वात्सल्य में ही इतना है भाव, जो साधारण आदमी रोते 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 आंसू नहीं। जिस समय में भरत जी आए निहाल थे और उस समय में शत्रुघ्न जी उनके साथ में थे, नगर में घुसते ही देखा धूल धूसरी चारों तरफ है, पशु सब रो रहे हैं, कोई भी प्रजा भरत की तरफ में शत्रुघ्न की तरफ में नहीं देख रहे, उनको देख करके मुख फिरा लेते, मानो अयोध्यापुरी विधवा के समान क्यों पड़ी हुई, समझ नहीं सके। भीतर गए मैया विधवा वेश में, उनको अगवानी करने लगी, उनकी आरती उतारे, देख करके स्तब्ध हो गए। पहले इसके बाद में पूछा कि तुम्हारी ये क्यों दशा, तो तुम्हारे लिए ही सब दशा, मेरे लिए तुम्हारे लिए ही तुम्हारे पिता से राज्य मांगा, तुम्हारे लिए राम को वनवास दिया, सीता को वनवास दिया, लक्ष्मण को वो लोग वन चले गए, अब तुम्हारा राज्य निष्कंटक है, ये तुम राज्य करो, मैं राज्य करूं। रामचंद्र वनवास चले गए, कहाँ चले गए, सीता लक्ष्मण भैया भी पीछे चले गया था, बस एकदम वहीं पर तड़प करके गिर पड़े, रोने लगे और फिर उन्होंने प्रतिज्ञा की, आज से तू हमारी मैया नहीं, मैया का संबंध नहीं जा। और कौशल्या के यहाँ कौशल्या को देखते ही कौशल्या जी देखते ही फप करके रोने लग गई और भरत जी उनकी गोदी में गिर गए और ये रोने लगे। इतना कैसा वातावरण बनाए एकदम करुणा का, रामचंद्र जब जा रहे होंगे उस समय क्या स्थिति होगी, दशरथ जी केवल कहा राम राम और तीसरी बार राम, मो नहीं आया बस, कैसी परिस्थिति। जब इनों के वात्सल्य में ऐसा है तो यशोदा जी का वात्सल्य भागवत में इसीलिए अधिक नहीं वर्णन किया गया, इनसे भी कोटि गुण उनका वात्सल्य। यशोदा की स्थिति थी। कौशल्या जी ने पीछे धैर्य धारण कर दिए, किंतु इनका धैर्य धारण करने का कोई प्रसंग ही नहीं आता। और इस यशोदा मैया से भी लाखों गुण अधिक गोपियों का विरह का भाव। पहले कृष्ण का विरह नहीं आता, और यदि किसी प्रकार से आ गया तो कभी भी आंखें सूखेगी नहीं। राम के करुणाशील लीला में आंखें आंसुओं से तर हो जाएंगी, कुछ दिनों के बाद में, कुछ देरी के बाद में, कुछ दिनों के बाद में फिर ठीक होकर के अपने काम धाम में लग जाएंगे। किंतु कृष्ण रस में यदि चित्त सारा दौर हुआ और उसमें आंसू निकले, वो जीवन के जन्मांतर तक भी वो अंत में वो ग्लोक वृंदावन में प्रवेश करके और भी उसकी आंखें गिर गई। ऐसा ही वर्णन किया, इसलिए वो यहीं पर यशोदा जी का भाव अब रख देते हैं, गोपियों का भाव रख देते हैं, आगे थोड़ा सा स्पर्श करके आगे चलते हैं। अब यहाँ से आरंभ करेंगे गोपियों के भावों को। गोपीनाम परमानंद आशित गोपिंद दर्शने खनम दुबसतमीव जासंगेन विना भवत्। गोपीनाम परमानंदम आशित गोविंद दर्शन, गोविंद दर्शने गोपीनाम परमानंदम आशित खनम दुबसतमीव जासंगेन विना अभवत्। गोविंद को दर्शन करके गोपियां परम आनंद में भर जाती और उनके दर्शन में गोपियों का एक क्षण भी सत्यु के समान बीतता था। ये कब की बात है, जिस समय में दावानल का प्रसंग, गायों को चराते हुए कृष्ण बांडी वन में उपस्थित हुए। कोटि कोटि सखा लोग कृष्ण के आगे पीछे साइड में गोलाकार राउंड बना करके बैठने लगे। 1, 2, 3, 4 हजार लाख राउंड बन गए, मंडलाकार बन गया। सभी बच्चे जो पीछे है वो सोच रहा है कि मैं कृष्ण के सामने एकदम बैठा, साइड में जो बैठा है वो भी सोच रहा है कि मैं कृष्ण के एकदम सामने, इधर वाला बैठा है बहुत दूर बैठा है वो समझता है कि मैं ही पहली पंक्ति में कृष्ण के पास हूँ। कृष्ण से खा रहा है, कृष्ण मानो उसको खिला रहे हैं और कृष्ण को वो खिला रहा है अपने लिए। हंसी दिलक जी सब कुछ चल रही है और उतने में गायें जो चर रही थी वो गायें चरती हुई आगे बढ़ गई। क्यों? कोई भी व्यक्ति कृष्ण को देख करके उसके कृष्ण से दूर नहीं हो सकता। कृष्ण बड़े आकर्षक हैं। गायें कैसे चली गई? जोग माया का प्रभाव तो सिर्फ लीला होगा, इसलिए जोग माया ने गोपियों गायों को ये दिख लाया, ये दूर में ही बहुत सुंदर घास है, हरी हरी घासें हैं, इससे भी अच्छी घास वहां पर भी है, जमुना में पानी पिया पास में और पासी में घास है, मैदान है, उसमें चल रही। देखा जी यहाँ से वहां बस इस घास को छोड़कर तो उधर, वहां जब गई तो वहां देखा जी और भी अच्छी है, वहां पर गई और अच्छी है, बस सब कुछ छोड़ती हुई वो धीरे 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 एकदम रेतीले मैदान में पहुंच गई। यहाँ पर सब कंडे मूंगे थे और उसके बनने घास उनकी लालसा से टूट गए। थोड़ी देर के बाद में देखा कि वहां पर एकदम बालू जल रहा है, तप रहा है, ऊपर से भी गर्मी बेहद गर्मी पड़ गई, खिलखिलाती हुई धूप, ऊपर से आग नीचे से आग, पानी कहीं नहीं, कलेजा फटने लगा। इतने में कृष्ण को, कृष्ण और सखाओं का ध्यान गैया कहाँ गई? हमारा कहीं धन है, गोधन ही हमारा धन है। इधर उधर देखा, कृष्ण ने कहा कि उसको मत, बैठो मैं अभी तैयारों को बुला देता। कहा नहीं हम लोग जाएंगे, अरे तुमसे बहुत मुश्किल होगी, मैं मैं तो यहीं पर कहीं से बांसुरी बजाऊंगा और बुलाऊंगा, वो आ जाएंगी, उन लोगों से होगा नहीं। तो कृष्ण पर उन्होंने विश्वास करके छोड़ दिया और कृष्ण वहां से चले। सखालु गए, सखालु माने नहीं, उनकी बात नहीं सुन करके छूट गए। जब वो चले गए, खोजते खोजते घासों के टुकड़े और उनके पैरों के चिन्ह देखते देखते थी उसी रास्ते से ये लोग गए। चलते चलते कृष्ण से बहुत दूर हो गए। थोड़ी देर जाने के बाद में देखा जिसे गायें तो इधर ही गई हैं, उनके पैरों के चिन्ह उधर ही से मुंज वन में प्रवेश किया। प्रवेश करने के बाद में निकलने का रास्ता नहीं, इधर जाना है। और उधर रखी वही चिलचिलाती धूप, आकाश ऊपर नीचे एकदम गर्म हो रहा, तप्त हो रहा है, कहीं भी पानी नहीं है। और इतने में कंस के दूतों ने देखा जैसे अच्छा मौका है, कृष्ण भी नहीं है, कोई सहायता करने वाला भी नहीं था, पहले इनको जला देने से कृष्ण तो अपने आप जल गए। बस आग लगाई और इतने में आग लगाने के साथ ही साथ में आंधी आने लगी। आंधी क्यों आती है?
हवा गर्म ऊपर चला
ऊपर जाएगी ठंडी हवा भरने के लिए, अपने आप आग लगने से जरूर वो हवा आएगी। बस चलने लगी और एक क्षण में ही आग चारों तरफ में पहुंच करके चारों तरफ से जलाने लगी। अब बीच में हो गए गैया और सखालु, त्राही त्राही करें, कृष्ण बलदेव जल्दी से रक्षा करो। कृष्ण थोड़े थोड़े दूर हैं, थोड़े वो तो निकट ही है, बस झट एकदम वहां पर उपस्थित हुए। नारायण जी से देखो आंखें बंद करो, सखाओं ने देखा जब कोई मंत्र पढ़ेगा, इसलिए कृष्ण ने सोचा कहीं मैया के यहाँ कह दिया जिसे आग खाया है, इसलिए इनको दिखला करके कुछ नहीं कर रहा है, इसे कहा जी आंख बंद कर दो। बस लोगों ने आंख बंद किया इनकी बात सुन करके, और जमीन आंख बंद किया तभी देखा जी अच्छा आंख खोलो, खोलते ही देखा जी भांडेर भट्ट में जैसे मंडली बंधी हुई है वैसे बंधी हुई, और गायें पागुर कर रही हैं, कहीं नहीं आग कहीं कुछ नहीं। मैस्मेरिज्म हो गया, मनुष्य जादू, ठीक ऐसे ही हमारी गति है। कोई समझे न समझे सभी उसी प्रकार से संसार रूपी दाबानल में झुलस रहे। कभी वो आग कभी थोड़ी सी कम प्रतीत होती है और कभी विषम भयंकर हो जाती है। मैया के पेट में मालूम होगा, जबकि पीप और रक्त और पैखाना के चक्की में गाड़ दिए जाते हैं, सांस लेने के लिए भी जगह नहीं रहती। मरते समय में और जन्मते समय में ये अधिक मालूम होता है। इसके अतिरिक्त भी संसार में भी लाख रुपया खर्च कर दिया, कोई उपचार नहीं, बेबस हो जाते हैं दुख सहने के लिए, कोमा हो जाता है, मैंने बोल नहीं सकते, हाथ पैर शून्य हो जाता है, तब तक देखते हैं आंख से आंसू निकलते हैं, बड़ा कष्ट होता है। उस समय में भी यदि कोई कृष्ण को पुकारे तो कृष्ण एकदम जल्दी से आविर्भूत होकर के उसकी रक्षा कर देते हैं। देखता है कि कब मैं गोवर्धन वैकुंठ धाम में पहुंच गया, पता ही नहीं चलता जे कब। भगवान का नाम का आश्रय ऐसा है, भव सागर को पार करने के लिए नाम ही एक जहाज है। निदे हमाद्यम सुलभम सो दुर्लभम प्लौम सुकल्पम गुरु कर्णधारम बयान कुलिन नभस प्रतारितम कुमार भवाभिन करेत आत्मा। गुरु रूपी कर्णधार, शरीर रूपी दृढ़तर, मनुष्य रूपी शरीर और किसी भी शरीर में नहीं होगा, सुदृढ़तर ये नौका के समान, और उसमें साधु संग भगवान की कृपा रूपी वायु है। इतना पाकर के भी यदि मनुष्य इस भाव सागर से नहीं तर गया, उसके समान आत्महत्या और कोई नहीं। और भी कहते हैं समाश्रयम देपाद पल्लवम
पल्लवपदम समाश्रिता पुण्यसा मुरारे भवामुदि वत्स पदम 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 यदि पदम नतेसम।
तो ऐसे भगवान के भगवान का नाम, भगवान की लीला कथाएं ही भाव सागर को तरने के लिए पक्की नौका है। इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। जिन्होंने मन से भी उसका ग्रहण कर लिया जो मैं भगवान का नाम करूंगा, भगवान की लीला कथा सुनूंगा और सुनता है, यथा स्थान में स्थित होकर स्थाने स्थित जहाँ पर हरि कथा होती है या जिस कुल में वर्ण में आश्रम में जहाँ भी कोई है वहीं भी स्थित होकर के भगवान की लीला कथाओं का स्मरण कर भगवानों का नाम इत्यादि कीर्तन और श्रवण करता है। बस कोई पता नहीं चलता और कब आसानी से सुख पूर्वक सहज ही भगवान को ये उसको पार करा दे, ऐसा ही है। इस तरह से इसलिए कह रहा था मुंजावटी तो वहाँ पर झट गाय देखा और सखाओं ने देखा कि हम तो उनको याद ही नहीं रही कब जल से, उसी तरह से हम लोग भी नहीं, हमको पता नहीं चलेगा कब भव सागर से निकल करके गोलोक वैष्णव धाम में सुख पूर्वक कृष्ण की सेवा कर रहे हैं पता नहीं। और लोगों के लिए भीषण पार होना बड़ा कठिन है, संसार दुख जलदौ पतितस्य काम क्रोधार नकार कबलितस्य दुर्वासना निगृहीतस्य निराशयस्य चैतन्य चंद्रमदी संसार सिंधु। ये क्या है संसार दुख जलदौ, ये जलधि माने अथाह अनंत दुष्पार समुद्र है और दुख जलदौ पतितस्य काम क्रोध नकर मकर, इसमें काम और क्रोध ये हैं मगरमच्छ इत्यादि बड़े बड़े विषधर सर्प हैं और निगृहीतस्य दुर्वासना में भगवान की सेवा के अतिरिक्त और हम दुर्वासनाएं जो हमारे हृदय में संसार भोग की जो इच्छा है लालसा है ये क्या है हथकड़ी और बेड़ी से कस करके बांध दिया गया, छोड़ नहीं सकते। कोई भी कामना करना यह हथकड़ी बेड़ी और रस्सी से बांधे हुए ये कामना से ही हम संसार में बंधन में पड़ेगा, कोई दूसरा लकड़ी का लोहे का बंधन नहीं इत्यादि है, ये दुर्वासनाएं ही ऐसी श्रृंखलाएं हैं जिनको तोड़ करके निकल जाना भगवान का भजन करना बड़ा भारी कठिन है, इससे भरा पड़ा असहाय हूँ कोई सहारा नहीं। हे प्रभो हे चैतन्य महाप आपके चरण कमल ही हमारे लिए एकमात्र सहारा है, ऐसा हो जाए और जो आश्रय करता है सुखपूर्वक महाप्रभु का कृष्ण का महाप्रसाद सेवन करता है और आनंद से नित्य करता है हरे गोविंद इत्यादि से राधा रमण हरि गोविंद जय और ठाकुर जी का दर्शन करता है कितना सुंदर नए नए रूप में और कीर्तन करता हुआ नित्य करता हुआ सुख से ठाकुर जी का जो प्रसाद आता है वो भी पाता है और हरिनाम करता हुआ कीर्तन करता हुआ बस बहुत सागर को पार करता है और लोग कठोर कठोर तपस्या करते हैं निराहार रहते हैं हवा भी बंद कर देते हैं कितनी तपस्या करते हैं और तभी तो उनको संसार पार करता है। इसलिए भक्ति जो है सर्व रूप में ये सबके लिए सुगम है। दुर्भागा लोग ऐसे ही हाथ में आए हुए अमृत को छोड़ करके गधे का पान रक्त पेशाब इत्यादि पान करते हैं अथवा गंगा को छोड़ करके कुप खोजते हैं कुप का पानी और महाप्रसाद छोड़ करके हविष्यान्न इत्यादि ग्रहण करते हैं या निराहार रहते हैं भूख से मरते हैं फलाहार इत्यादि करते हैं तो ये दुर्भाग्य का है। इसलिए कहते हैं गोपीनां परमानंदम आशीष गोविंद दर्शने तो वो मंदिर वन में मंदिर वन में जबकि ये लीलाएं हुई तो सब सखा लोग जब लौटे शाम को तो अपने माता पिता और गोपियों से इसको कहा आज तो बड़ी विचित्र लीला हुई, सब लोग हम लोग जल रहे थे ये स्वप्न था या क्या था, गायें ही जल रही थी और एक क्षण में कृष्ण ने आकर के नजर ने क्या किया और हम लोग उस विपत्ति से बच गए। उन गोपियों को प्रतिदिन कृष्ण के लिए प्रतीक्षा होती थी, जब जाते ना कृष्ण गोचारण करने के लिए, उनको पहुंचाने के लिए उनके पीछे पीछे चलते गोपी, और जब आते तब तक प्रतीक्षा करते और तभी तक घरों में बैठ करके परस्पर वेणु गीत इत्यादि वो सब परस्पर सुनती रहती कृष्ण के लिए। और प्रतिज्ञा कब कृष्ण आएंगे, बंसी बजेगी, सिंगा बजेगा, गायों का हंबरम होगा और गायों की पैरों से धूल जो उठेंगे उसको दे करके और घर से निकल जाए। उनकी शाम को जब कृष्ण आ रहे हैं तब उनकी स्थिति कैसी होती है उसी का ये वर्णन करते हैं, गोपी नाम परमानंद मासी। जब वो जाते कृष्ण गोचारण के लिए तो मन विरह में आतुर हो जाती, दिन कटते कटता नहीं था, और जब वहां से आते तो उनको देकर के परम आनंद में ही हो जाती, जहां गोविंद का दर्शन किया। उस समय गोपियों को जो आनंद होता था वो चरण सीमा प्राप्त आनंद होता था, अथवा गोविंद दर्शन मात्र से ही, जैसे महालक्ष्मी जी को नारायण की सेवा में आनंद होता है उससे भी कोटि गुण समझो इनको आनंद होता था, अर्थात दर्शन मात्र से एमन प्रभाव तथा सम्यक दर्शनानंद संभाव। यदि दर्शन से ही तना आनंद हो रहा है तो कृष्ण निकट आने पर गोपियां उनसे भाषण करती होगी, उनके हाथों को अपने हाथों में ले करके रखती है, उनके हाथों को लेकर के अपने सिर पर अपने अंगों पर धारण करती हूँ और बड़े प्यार से बतलाती होंगी उनसे, तो उनके आनंद की कल्पना करना कैसा जब देखने में ही तना आनंद, जब उनकी कथाओं की सुनने में ही तना आनंद है। सचमुच में यदि हम लोग उस स्थिति में पहुंच करके कृष्ण का दर्शन और स्पर्शन हो तब न जाने कैसे, ये सब उसी के रास्ते बतलाए जाए। ये कैसे इन लीलाओं का स्मरण करने से, चिंतन करने से, कीर्तन करने से और उन स्थानों में जाकर के सिर से लीलों को स्पर्श करने से ये सब होता है। ये लीला कहाँ हुई, जहां पर की गोपियां देख रही हैं, नंदगांव में, वृंदावन में भी हुई होगी, काम्यवन में भी हुई होगी, कोकिल इत्यादि वन में भी हुई होगी, माने द्वादश वन, मधुबन में भी गोचारण की लीला होती है। जब कृष्ण आते हैं लौट करके मैया से कहें, मैया मैंने ही माखन खाए, कब खाए, मैंने माखन, तू झूठ बोलती है, अरे सवेरे हुई, सवेरा जहाँ हुआ और गायों के पीछे पीछे हमें भेजा पठायो, क्या भोर भयो गौवन के पीछे मधुबन मोही पठायो, सवेरे तो भेज दिया और मैंने मक्खन कब खाया, बीच में आता तब तो और मैं लौटा कब, शाम जब हो गई तो गौओं के पीछे पीछे आया, भैया मैंने कब भी कितने मक्खन खाया, ओ, तुम हम पर इस प्रकार से लांछन लगा रही हो तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं तुम्हारा पुत्र नहीं हूँ और दूसरे का पुत्र हूँ और तुमने हमारा पालन पोषण किया है, तो ठीक है, तो मैं जब दूसरे का ही पुत्र हूँ तो तू ऐसे ही कहेगी तो मैं निकल करके चला जाऊँ और तुम यहाँ पर सुखी रहना। बस सुनते ही यशोदा जी का हृदय एकदम प्रवृत्त हो गया, नहीं 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 तुमने मक्खन और कृष्ण का, फिर जब यशोदा जी रोने लगी तो ये भी रोने, तो फिर ये भी कहते हैं मैंने एकदम बदल गया सिंह ही एकदम। ये जहाँ लीलाएं हुई होंगी उस स्थान में इस लीला का स्मरण करने से, वो लीलाएं नंदगांव में या जहाँ पर कृष्ण होंगे यहाँ पर, वहाँ पर जाकर के लोटपोट करने से और प्रार्थना करने से ये लीलाएं उस भूमि के प्रभाव से, लीला के प्रभाव से, लीला भी वैसे ही जैसे है कृष्ण, उनका स्थान भी वैसे है, उनका नाम भी वैसे है, वो सभी कृष्ण प्रेम को देने में समर्थ हैं। इसीलिए उन स्थानों में जाना, उनकी धूलि ग्रहण करना, वहाँ पर रोना, लौटना पर लौटना, उनकी कथाओं को सुनना और उनकी लीलाओं के कथाओं से संबंधित यशोदानंदन, राधा रमण, गोपीनाथ, रास बिहारी इत्यादि नामों का कीर्तन करना रोते रोते, बस वो लीलाएं की बात है, यही बतला रहे हैं। ऐसा भक्त मिल जाए और उनसे यही कथा सुने सब होगा और जल्दी दर्शन मात्र से जब ऐसी हो रही है स्थिति, लीलाओं के कथा से ऐसा हो रहा है, सुनने से ही ऐसा भाव हो रहा है, तब यदि कृष्ण सचमुच में मिल जाए और शाम का समय हो, गऊ को चरा करके आ रहे हैं, धीरी धीरी नीरी नीरी करते हुए आ रहे हैं और केश कलाक गऊ के खुर से उठे हुए धूल से धूतरित हो रहे हैं और भी बड़े सुंदर दिख रहे हैं और सखा लोग जय जयकार कर रहे हैं उनकी और गोपियां बहुत दूर से अपने आंखों से ही उनकी आरती उतार रही हैं और यशोदा मैया बलैया ले रही हैं, सब गोकुल के नर नारी कृष्ण के दर्शन के लिए एकदम वहां पर उमड़ पड़े हैं। उस समय में थोड़ा सा कृष्ण अपनी मैयाओं से इधर हुए और गोपियां वहां पर पहुंची। उस समय में संभाषण इत्यादि केवी कलाप के द्वारा, विलास के द्वारा, कैसा विलास, परस्पर बातचीत और आनंद की बातें, आनंद के व्यवहार परस्पर, ये सब जो केवी कलाप हैं, इसको वर्णन करने में कौन सा, उसमें कितना आनंद गोपियों को जितना है उससे हजार गुना कृष्ण को आनंद और कृष्ण को जितना आनंद उससे भी हजार गुना आनंद से पड़ा, इसका वर्णन कौन करेगा। दर्शनार्थ यहाँ यदि दर्शनार्थ हुआ पाठांतर में यहाँ पर गोविंद दर्शने है तो गोविंद दर्शने से और इसमें यदि कहीं कहीं पर है पाठांतर दर्शनार्थ तो सामान्य दर्शन के बाद में इतना आनंद हो रहा है, दर्शनार्थ ने दर्शन के अनंतर और वहां दर्शन में और दर्शन में जब दर्शन कर रही है और दर्शन करने के बाद जो आनंद हो रहा है, ये दोनों बड़ी इस प्रकार के अर्थ हो रहे हैं क्योंकि गोविंद के विरह में एक क्षण भी गोपियों का एक सैकड़ों युगों की भांति व्यतीत हो जाता है। उसी के लिए कह रहे हैं कि जब कृष्ण गोचारण करने के लिए आ रहे हैं और गोपियां देख रही हैं, यशोदा मैया मिल रही हैं, उस समय में ये निकट नहीं जा सकती, कौन गोपियां जो किशोरियां हैं वो निकट नहीं, क्यों, नंद बाबा इत्यादि सब ससुर सास सब खड़े पड़े हैं इसलिए नहीं जा सकते। अब उनको एक मिनट जब जो यशोदा जी के साथ में अपनी मैयाओं के साथ में जो रह रहे हैं और उनकी आरती उतार रही हैं, भलैया ले रही हैं, सब कुछ, किंतु उन लोगों के लिए क्या हो रहा है, वो जो मिलन नहीं हो रहा है, बातचीत नहीं, एक क्षण अथवा जो पलक गिरता है उसमें वो देख नहीं पाती हैं, एक क्षण के लिए पलक गिरने के कारण उसके लिए वो ही एक क्षण ही एक युग एक सैकड़ युग के समान हो जाता है, हम लोग इसकी कल्पना नहीं कर सकते, कल्पना वही कर सकते हैं जो इसको थोड़ा सा अनुभव किए हैं, क्योंकि भगवती ने, भगवती माने देवियों ने, उन्होंने स्वयं ही कहा है अर्ध जग भवान अन्निकाननम पक्ष को जो बनाने वाले, आंखों के पलकों को जो बनाने वाले कौन है, ब्रह्मा जी, वो कैसे हैं, जड़ बुद्धि वाले हैं, मूर्ख हैं, बुद्धि उनकी नहीं है, क्यों, कृष्ण को देखने के लिए केवल एक आंख और उसमें भी पलक, ये तो बुद्धिमत्ता नहीं, यदि हम ब्रह्मा होती बनाने वाली काम सारे आंखों सारे अंगों में आंख ही आंख बना दी, सब आंखों से कृष्ण का और किसी में पलक नहीं रखते, ऐसा बना दी। और कभी भी वियोग कृष्ण से नहीं होता, इसलिए वह अटक जगवान हे भगवान मैंने हे कान, दिन में जब तुम गायों को चराने के लिए वृंदावन में भ्रमण करते हो, तुम्हें न देकर के एक क्षण भी त्रुटि भी एक दुख के समान व्यतीत होता है, और लौटने पर आंखों का पलकों से गिरना भी उनके लिए सज्ज नहीं होता है। वस्तुतः क्षणार्थ सत युग के समान नहीं होता है। कभी होता है ऐसा ये 100 युग एक क्षण के बराबर?